काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 55, 23, राग बसंत। इवे गुजरी गाले कर दिया, कुछ की तो नाही सर्दियाँ, एक रहाओ तू सुत्तो चादरी ताणी कै, तू अमली ना कितिया जीड़ी कै, रत रोसे रेखा भर दिया दो, जाए पुछो इन्हा वाणिया जिन्हा, अंजर बल्दी डाढ़िया, उन्ना अर्ज ना कीती डर दिया। तीन कहे हुसैन सुनए के, पछतासी इथो जाए के, कोई संगी ना साथी मर दिया। चार गाली अर्थात बातें, रत अर्थात थोड़ा, रोसे अर्थात राश, लेखा अर्थात कर्मों का फल, वाणिया अर्थात मुसाफिर, डाड़िया अर्थात लपेटना। व्याख्या, सारी उम्र सिर्फ बातें करते हुए गुजर गई, मनुष्य ने और कोई भी काम नहीं किया, एक रहाओ। हर बात से बेखबर मनुष्य चादर तान के सोता रहा, अच्छे कामों पर कोई अमल जानबूझकर नहीं कर किया। अब कर्मों का लेखा जोखा मांगते समय जब गलत कार्य ही नजर आ रहे हो, तो यह जानकर मनुष्य को रोष होने लगता है। दो पृष्ठ 56, उन मुसाफिरों से जाकर पूछो जो परमात्मा के मार्ग के पंक्षी बने थे, अब कर्मों का लेखा जोखा करते हुए ताकतवर दूतों से डर लगता है, डर के मारे उनके आगे अर्ज भी नहीं की जा सकती है। तीन हुसैन इस सच्चाई को पुकार कर कहता है कि अब यहाँ से खाली हाथ जाते हुए पछताना पड़ रहा है, और मरते समय कभी भी कोई संगी साथी साथ नहीं देता। चार 24 राग धनासरी। इवे गुजरी राती खेड़ड़ी नाथिया, एक रहाओ सभे जाती वडिया निमाड़ी, फकीरा दी जाती एक, खेड़ी धिन्नो खिड़ाए धिन्नो, थी गई पर भाती दो, खड़ा पुकारे पातड़े बेड़ा कवाती। तीन शाह हुसैन दी आजजी कांच, अर्थात काट कुहाड़े वाती। चार थिया अर्थात हुआ, धिन्नो अर्थात लो या लेना, पातड़ी अर्थात मल्ला, कवाती अर्थात बुरी दशा में, आजजी अर्थात बेचारगी की हालत, कांच अर्थात लकड़ी। व्याख्या, रात इस प्रकार बीत गई कि कुछ भी मालूम न पड़ा और खेल भी बाकी रह गया। रहाओ कि इस पंक्ति का असल अर्थ यह है कि जीवन इस तरह से बीत गया कि दुनियादारी के काम भी पूरे न हो सके। इस दुनिया के समाजों में भी सभी जातियां स्वयं को उच्च मानती हैं और अपने बड़प्पन को प्रकट कर दूसरों से अलग दिखाने का यत्न करती है, परंतु फकीरों की जात सभी जातियों से नम्रता के मामले में नीची होती है। फकीर स्वयं को उच्च प्रकट करने की कभी कोई कोशिश नहीं करते, एक, जबकि दूसरी जातियों के लोग इस संसार के मोह जाल में जकड़े माया ममता लालच स्वार्थ आदि के खेल खेलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि उनके उम्र बीतती जा रही है, और प्रभात के रूप में जाने विदा होने की बेला आ गई है। दो आखिरी समय में इस भव सागर से पार ले जाने वाला मल्ला किनारे पर खड़ा हो पुकारने लगता है और बेड़ा बुरी हालत में नजर आता है, क्योंकि उसमें एक जैसे नजरिए वाले ही मनुष्य भरे दिखाई देते हैं और उनके बोझ तले बेड़े की हालत खस्ता नजर आती है। तीन शाह हुसैन के अनुसार बेचारगी का यह आलम होता है जैसे लकड़ी पर पृष्ठ 57 कुल्हाड़ी पड़ने वाली हो, उस समय बचने का उपाय सोचना ना समझे के बाद प्रतीत होती है। 4. अर्थात जीवन के संध्या में भी कई बार संभलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि स्वार्थों और मनोविकारों के खेल मनुष्य को कुछ सोचने समझने नहीं देते। मनुष्यों में फकीरों जैसी नम्रता होनी जरूरी है। आखिरी समय में वही लकड़ी को कुल्हाड़ी से बचा सकती है। 25. राग तुखारी। सयो मेरा माहिता आड़ मिलावो, काहले होइया घड़ी, एक रहाओ बाबल कोलो, दास न मंगदी मऊना मंगदी मालो, इको रंगेड़ी पली पली मंगदी छुट्टे हीर जंजालो, दो रोंदी पकड़ बैठाई खोरे, जोरी दितिया लावा, खुनी खेड़े दे लड़ बग्घी, कूका ते कुरलावा, 3. करंग सबर रांगेड़ दी सेवा, हीर सुपने मिली मिली आवे, 4. राती भी काली ते मही भी कालिया, चरिया लोड़नी बेले, कहे हुसैन फकीर निमाड़ा, बिछुड़िया रब मेले, 5. सयो अर्थात सहेलिया, माही अर्थात प्रीतम, काहली अर्थात जल्दी, घड़ी अर्थात सघन या बहुत, कोलो अर्थात से, जंजालो अर्थात मुसीबतों से, बेले अर्थात दरिया किनारे का जंगल, लोड़नी अर्थात ढूंढना। व्याख्या। ए सहेलियों, मुझे मेरे प्रीतम से मिलवा दो। उससे मिलने के लिए मेरा मन तड़प रहा है और अब ये तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इंतज़ार करना और सहन करना मुश्किल हो रहा है। रहाओ, प्रीतम के पास जाने की मुझे इतनी जल्दी है कि मैं अपने पिता माता से कोई भी दान दहेज नहीं चाहती। मैं अर्थात जीवात्मा सिर्फ अपने रांझे अपने प्रीतम को पाना चाहती है, ताकि हीर की सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। जब हीर को उसका रांझा मिल जाएगा तो उसकी परेशानियां और झंझट खत्म हो जाएंगे। 2. लेकिन हीर की पुकार किसी ने भी न सुनी और उसे जबरदस्ती वेदी पर बिठाकर खेड़ियों अर्थात हीर का ब्याह खेड़े से हुआ था से उसके फेरे करवा दिए गए। खेड़े के साथ ब्याह दिए जाने के बाद हीर और भी रोने पीटने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। 3. अब हीर ने सब्र कर लिया और रांझे से सपने में मिलकर ही संतोष करने लगी। 4. पृष्ठ 58. परंतु रात भी काली थी और उसकी भैंसें भी काली थी। उन्हें वेल में चारा ढूंढने में दिक्कत होने लगी। इस पंक्ति में रांझा की ओर संकेत किया गया है। दोनों ही एक दूसरे से बिछुड़ने के बाद अंधेरे में हाथ पैर मारने लगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। फकीर हुसैन कहता है कि बिछड़े हुए को भगवान स्वयं ही मिलवाता है। 5. अर्थात इस काफी में शाह हुसैन ने हीर रांझा की प्रेम कथा को आध्यात्मिक आधार देकर पेश किया है। हीर को सिर्फ रांझा ही प्रीतम रूप में चाहिए, परंतु जब दुनियादारी के अनेक चक्करों के कारण हीर को जबरदस्ती खेड़े की से ब्याह दिया जाता है तो भी वह रांझा को भूलती नहीं और न ही खेड़े को पति रूप में स्वीकार करती है। दूसरी ओर रांझा भी हीर के बगैर भटकने लगता है, परंतु काफी का आंतरिक अर्थ यही है कि यदि मनुष्य की लगन और प्यार सच्चा हो तो भगवान उनकी मदद जरूर करता है और वह स्वयं बिछड़े हुए को मिलाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम भी हीर रांझा के प्रेम की भांति सच्चा और पवित्र होना चाहिए। 26. राग आसावरी। सज्जड़ देगल बांह असाड़ी, क्यों कर आँखा छड़वे अड़िया, पोस्तियां दे पोस्त वांगू, अमल पया साड़े हट वे अड़िया, राम नाम दे सिमरन बाजो, जीवन दा की हजर वे अड़िया कहे हुसैन फकीर साईं दा साहिब दे लण लग वे अड़िया पोस्तियां अर्थात नशेबाज हड अर्थात रंगो या हड्डियों अमल अर्थात नशा साहिब अर्थात प्रीतम व्याख्या अपने प्रीतम के गले में मेरी बांह अर्थात कलाई है मैं क्यों चाहूं कि वह उसे छोड़ दे अब मैं अपने प्रीतम के संग ही रहना चाहती हूं तो मैं उसे क्यों कहूं कि वह मेरी कलाई परे कर दे मुझे नशेबाज के नशे की भांति प्रीतम के प्रेम का नशा हो गया और इस नशे ने मेरे शरीर तथा हड्डियों में अपनी जगह बना ली है राम नाम के जाप के बगैर जीवन जीने का कोई आनंद भी नहीं है यह नशा भी है और इस नशे से जीवात्मा छुटकारा भी पाना नहीं चाहती प्रभु के समीप रहने का एक ही नायाब तरीका है और वह है कि अपने प्रीतम से नाता जोड़ ले तभी जीवन सफल हो सकता है।